What the fuck? सूर्य एकदम चिल्लाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो आस्तिक उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि पापा का लाडला बेटा गाली भी देता है। सूर्य गुस्से में आस्तिक को देखता है तो आस्तिक खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ अपनी पेट की पॉकेट में डालते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ? इतनी औकात तुम डिजर्व नहीं करते हो कि आस्तिक रायसेन खुद चलकर तुमसे मिलने के लिए आए। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें फ़ोन करने के लिए। कल जब तुमने लावण्या के घर पर हमला किया था तब मुझे पता चल गया था कि वहाँ पर मौजूद लोग तुम्हारे ही हैं। वो तुम्हारे आदमी थे जिसने लावण्या को गोली मारी थी। पैसे मारना पड़ेगा मिस्टर सूर्य मल्होत्रा, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है। वैसे तो हम एक दूसरे को ना तो पर्सनली जानते हैं और ना ही प्रोफेशनली। हमारे परिवार का भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले एक साल से जो तुम माफिया में शामिल होने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हो बस यही हरकत बताती है कि तुम अभी तक कितने बच्चे हो, क्योंकि ऐसे खेल सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं। सूर्य गुस्से में आस्तिक को देखते हुए बोला, अच्छा तो इसीलिए तुमने मेरे आदमी की जान ली है और उसके मरे हुए शरीर की मुझे फोटो दिखा रहे हो? सूर्य ने ठीक उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया तो आस्तिक मुस्कुराते हुए उससे बोला, तो मतलब तुम इस आदमी को जानते हो और ये तुम्हारी ही ऑर्डर पर मेरे घर पर आया था मुझे और मेरी वाइफ को मारने के लिए, लेकिन अफसोस तुम्हारा कुत्ता कुत्ते की मौत मर गया। उसके बाद आस्तिक ने अपना एक कदम सूर्य की तरफ बढ़ाया और उसे चैलेंजिंग लेकिन खतरनाक निगाहों से देखते हुए कहा, मैं यहीं अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मर गए। लेकिन वो क्या है ना, ना तो तुम माफिया के बारे में कुछ जानते हो और ना ही वहाँ के लोगों के बारे में। इसीलिए तुम्हें एक बात बता दूँ कि जब एक इंसान को माफिया में जाने के लिए ट्रेन किया जाता है तो बचपन से उसे ऐसा बना दिया जाता है कि वो सामने वाले को पर्सनैलिटी को एक मिनट में पहचान लेता है, जो बात शायद तुम्हें नहीं है। इसीलिए तो तुम कभी माफिया का हिस्सा नहीं बन सकते हो। पर मैं बचपन से ही इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसीलिए इंसान को पहचानने में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, जैसे कि तुम्हें पहचान लिया है। और तुम्हारे माथे का ये पसीना बता रहा है कि तुमने ये सब मजबूरी में किया है, या यूँ कहने कि तुमसे ये काम करवाया जा रहा है। सूर्य गुस्से में एकदम पागल हो गया था। वो तेज़ी से आस्तिक के करीब आता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसने कहा, यू बास्टर्ड। लेकिन इससे पहले कि वो उसके गिरेबान को अपने हाथों में जकड़ सकता, आस्तिक ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पर मारा और सूर्य दूसरी तरफ गिर जाता है। वो सोफे पर बुरी तरह से गिरा था और उसके होठों के किनारे से खून भी निकल आ रहा था। उसके बाद वो सोफे से टकरा के नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर उठकर बैठ जाता है और अपने आप को संभालने लगता है, लेकिन आस्तिक उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे अपनी ख़तरनाक आज़माती हुई नज़रों से देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी का किडनैप करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बेंगलुरु में भी तुमने दो बार मुझ पर अटैक करवाए थे, लेकिन वो अटैक तुमने मुझ पर नहीं बल्कि मेरी वाइफ को करने के लिए किए थे। सूर्य के मुंह से खून निकल रहा था। उसने अपने होठों से खून को अपने मुंह में लिया और उसे साइड में थूक दिया। उसके बाद वो जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं थी, वो किसी साइको की तरह हंस रहा था और उसने हंसते हुए आस्तिक को देखकर कहा, तो तुम एक प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह अपनी बीवी की मदद करना चाहते हो? क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो आस्तिक रायचंद? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो जो अपनी बीवी को सिर्फ अपने फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए अपने पास ज़बरदस्ती रख रहा था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो उसे एक बच्चा हासिल कर सके, और तुमने उसके साथ जितने भी रिलेशन बनाए हैं वो सब ज़बरदस्ती बनाए हैं। आस्तिक का चेहरा एकदम गुस्से में लाल हो गया था। वो अगले ही पल सूर्य की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ता है और उसे झटके से खड़ा करता है। उसके बाद उसने सूर्य की गाल पर एक ज़ोरदार मुक्का और मारा। इस बार भी सूर्य संभल नहीं पाया और पीछे दीवार से जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसने हंसना बंद नहीं किया। वो आस्तिक पर हंस रहा था, या यूँ कहें कि उसकी सिचुएशन पर हंस रहा था। सूर्य दीवार से लगा हुआ था, अब तो उसके माथे से भी खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी उसने हंसना बंद नहीं किया। आस्तिक गुस्से में सूर्य के पास आता है और उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में खींचते हुए उसके गर्दन को ऊंचा कर देता है। वो गुस्से में उबल रहा था और अपनी लाल खूंखार आंखों से उसने सूर्य को देखा। आस्तिक उसके चेहरे के पास जाते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, अगर तुम और वो जिसके इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तो सामने से आकर मुझे लड़ो। अगर तुम सच में एक असली मर्द हो तो मुकाबला मुझसे करो। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने हौसले बड़े रखो, हालांकि ये नामुमकिन है तुम जैसे दोगले पास इंसानों के लिए। ऐसा कहते हुए आस्तिक ने उसे दूर झटक दिया और वो दूर ज़मीन पर जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद सूर्य ने दीवार का सहारा लिया और खड़े होते हुए वो आस्तिक को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान अभी भी सामान्य नहीं थी। इतना पीटने के बाद अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आस्तिक का एक हाथ ही बहुत ज़ोरदार पड़ता है, लेकिन यहाँ सूर्य को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हंसते हुए कहता है, मैं दोगला हूँ? अगर मैं दोगला हूँ तो कभी खुद के अंदर झांक कर देखा है तुमने? तुम यही चाहते हो ना कि ये खेल अब आमने सामने हो? तो
तो अब क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूँ, तो ठीक है, आज के बाद ये खेल आमने सामने ही होगा। आस्तिक भी एक डबल स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। इतना कहने के बाद आस्तिक लापरवाही से मुस्कुराता है और उसके बाद उसके केबिन से निकल जाता है। नीरज और आस्तिक दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। आस्तिक ने अपना पार्किंग में आने के बाद सब सही किया और कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते आस्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान कैसी थी वो तो पता नहीं, लेकिन वो बहुत खुश नजर आ रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसने अपने कपड़े सही किए और अपने बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए उसने घर की डोरबेल बजाई। दो मिनट बाद अरुणिमा ने घर का दरवाजा खोला और वो एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और अरुणिमा का ये चेहरा उसे हमेशा ही लुभावना नजर आता है। लेकिन अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी। उसने दोनों दरवाजों के किवाड़ को पकड़ा हुआ था और वो वहीं पर खड़ी थी। आस्तिक ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अरुणिमा उसे अंदर आने के लिए जगह ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो हैरानी से आस्तिक को देखे जा रही थी। क्या हुआ, आस्तिक ने हैरानी से कहा, तो अरुणिमा उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, कहाँ चले गए थे तुम बिना कुछ बताए? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। उसके ऐसे कहने पर आस्तिक मुस्कुरा जाता है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया। सॉरी अगर मेरी हरकत की वजह से तुम परेशान हुई हो तो। अरुणिमा हैरान हो गई। आस्तिक उससे माफी मांग रहा है और ये वो पिछले कई दिनों से कर रहा है। हर छोटी छोटी बात पर वो बस ये चाहता है कि अरुणिमा उससे नाराज ना हो, इसीलिए कभी भी किसी भी बात पर वो सॉरी कह देता है। अरुणिमा ने उसे एक नजर देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी से दरवाजे से साइड हटते हुए बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार जहाँ भी जाओ मुझे बताकर जाना, मैं परेशान हो जाती हूँ। अब आओ, अंदर आओ।
आस्तिक किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी बीवी की बात मानते हुए घर के अंदर कदम रखता है। वो जैसे ही अंदर आता है, सोफे पर आते हुए बैठता है और उसने तुरंत कहा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरुणिमा ने कहा, अपने कमरे में हैं, रुको मैं बुलाती हूँ। लेकिन तभी अरुणिमा के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और अपना बैग भी अपने साथ लेकर आए थे। ये देखकर अरुणिमा हैरान हो जाती है और आस्तिक भी हैरान हो जाता है। लेकिन अब ब्रजेश जी ने कहा, अरे आस्तिक बेटा, तुम आ गए, हमें तो लगा हम तुमसे मिले बिना ही यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आस्तिक हैरानी से कहा। तो आशा जी कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मतलब? हम अपने घर वापस जा रहे हैं। और कितने दिन बेटी के घर रहेंगे?